राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी गोपी जनावल्लभा गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमोनतीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी या राधा माधव कुंज विहारी राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jai Jai Jagannath Jai Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Sato Jayamudhirayet Nashta Prayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishikim. Srimad Bhagavatam, Skanda 9, Adhyay 13, Shloka Sankhya 3. Nimihim Jalam Idam Vidvan Satram Aravat
ఆత్మవాన్ తావత్ ఋత్విగ్భిః అపరై తావత్ న ఆగమత్ యావత్ గురుః. నిమిశ్చలమిదం విద్వాన్ నిమిశ్చలమిదం విద్వాన్ తత్ర మారబ్ధదాత్మవాన్ తత్ర మారబ్ధదాత్మవాన్ ఋత్విగ్భిరపరైస్తావన్ 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 నాగమాత్యావ యావతా గురుః నాగమత్యావతా గురుః నాగమత్యావతా గురుః. నిమిశ్చలమిదం విద్వాన్ తత్రం ఆరబ్ధదాత్మవాన్ ఋత్విగ్భిరపరైస్తావన్ నాగమద్యావతా గురుః. నిమిశ్చలమిదం విద్వాన్ తత్రమారబ్ధదాత్మవాన్ ఋత్విగ్భిరపరైస్తావన్ నాగమద్యావతా గురుః. నిశ్చలమిదం విద్వాన్ తత్రమాత్మవాన్ ఋత్విగ్భిరపరైస్తావన్ నిమిశ్చలమిదం విద్వాన్ తత్రమారబ్ధదాత్మవాన్ ఋత్విగ్భిరపరైస్తావన్ నాగమద్యావతా గురుః. నిమిశ్చలమిదం విద్వాన్ తత్రమారబ్ధదాత్మవాన్ ఋత్విగ్భిరపరైస్తావన్ గురుః. నిశ్చలమిదం విద్వాన్ తత్రమారబ్ధదాత్మవాన్ ఋత్విగ్భిరపరైస్తావన్ నాగమాత్యావగా గురుః. నిమిశ్చలమిదం విద్వాన్ తత్రమారబ్ధదాత్మవాన్ ఋత్విగ్భిరపరైస్తావన్ గురు. నిమిహి నిమి రాజా మహారాజ్ నిమి నే చలం किसी भी क्षण समाप्त होने वाले इदम इस जीवन को विद्वान इस तथ्य से बड़ी भांति अवगत होकर तत्त्वम यज्ञ को आरभत शुरू किया आत्मवान स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ऋतिग्र पुरोहितों द्वारा अपरय वशिष्ठ के अतिरिक्त अन्य तावत उस समय तक ना नहीं आगमत लौट आया यावत जब तक गुरु वशिष्ठ। अनुवाद और तात्पर्य ज्वाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद महाराज निमी स्वरूप सिद्ध जीव थे, देव उन्होंने सोचा कि यह जीवन क्षणिक है, देव दीर्घ काल तक वशिष्ठ की प्रतीक्षा ना करके उन्होंने अन्य पुरोहितों से यज्ञ संपन्न करना शुरू कर दिया। तात्पर्य चाणक्य पंडित का कथन है, शरीरम क्षण विद्वांसी अल्पांतस्ताइनो गुणाः। इस संसार में मनुष्य की आयु किसी भी क्षण समाप्त हो सकती है, किंतु यदि कोई इसी जीवन में कुछ उल्लेखनीय कार्य करता है तो इस गुण का अकन इतिहास में सदा सदा के लिए हो जाता है। महाराज रिमि इस सत्य को जानते थे। मानव जीवन पाकर मनुष्य को इस तरह कर्म करना चाहिए जिससे वह अंत में भगवत धाम जा सके, यही आत्म साक्षात्कार है। ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप प्रदामहं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणरिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तराधा कान्तनमोस्तुते सत्यकाञ्चन गौरङ्गिराधे वृन्दावनेश्वरि विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा ये नवा स्कंद का 13वां अध्याय है। 13वां अध्याय का 3रा श्लोक है, लेकिन पहला और दूसरा श्लोक का तात्पर्य नहीं है, इसलिए उन श्लोकों को भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो 13वां अध्याय का शुरुआत हो रहा है, 13वां अध्याय में ये सूर्यवंश के राजाओं का पूरा वर्णन समाप्त हो जाता है। 14वां अध्याय से चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन शुरू होता है। जैसे कि आपको मालूम है दो वंश है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। अभी सूर्यवंश के राजाओं के चरित्र में जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुए भगवान स्वयं रामचंद्र, उनका संक्षिप्त में दो या तीन अध्याय में वर्णन किया गया है। अभी निमी राजा से लेके आगे जितने भी अन्य राजा हुए उनका उल्लेखन हुआ है। उनमें से अन्य प्रसिद्ध राजाओं में इक्ष्वाकु के बाद, रामचंद्र के बाद निमी राजा बड़े प्रसिद्ध हुए, उनका वर्णन श्लोकों में हुआ है। निमिर इक्ष्वाकु तनयो, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वैराग श्लोक में, निमिर इक्ष्वाकु तनयो। निमी कौन है? इक्ष्वाकु राजा का पुत्र है। वशिष्ठम आवृत विजम, वशिष्ठ को उन्होंने, वशिष्ठ के पास गए और उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप में मेरा यज्ञ जो है उसका ऋत्विक बनिए। यानी ऋत्विक का अर्थ है जो यज्ञ के मुख्य ब्राह्मण होते हैं, यज्ञ को पूरा संभालने वाले ब्राह्मण होते हैं, चीफ प्रीस्ट आप बनिए। ऋत्विजम अवृत ऋत्विजम आरभ्य सत्रम, तो मैंने एक यज्ञ को शुरू किया है या शुरू करने के सारा सामग्री इकट्ठा किया है, सब कुछ किया है, अभी आप हमारे ऋतिक बनिए करके निमंत्रण दिए। वशिष्ठ आह, बाद में सत्रम सो अपी आह, यानी वशिष्ठ ने कहा इस प्रकार, क्या कहा? सत्रेन प्राग्वृतोऽस्मि भोः, पहले ही मैंने वचन दे चुका हूं इंद्र को कि इंद्र का यज्ञ संपन्न करने के लिए, दोनों का यज्ञ समान समय में हो रहा है, इसलिए क्या करो आप, मैं वापस आऊंगा। काम निवृत्य निरवृत्य आगमिष्यामि, अभी रुको मैं जाऊंगा, उनका इंद्र का यज्ञ समाप्त करूंगा, समाप्त करके वापस आऊंगा। तावत माम प्रतिपालय, तावत माम प्रतिपालय, तब तक मेरा इंतजार करो। ऐसे वशिष्ठ ने इस प्रकार कहा कि राजा को, निमी को, मैं जब तक वापस नहीं आऊंगा तब तक मेरा इंतजार करो, यानी तब तक तुम यज्ञ का कोई कार्य और शुरुआत मत करो। जैसे बात निमी राजा ने सुना तो निमी जो है वो तुष्टिम, वो शांत हो गए। तुष्टिम आसित गृहपति, तो कहा अपि इंद्रस्य अकरोद मतम, तो वशिष्ठ ने जैसे उनको कहा राजा को आप मेरे आने तक रुकिए, ऐसा बोल के वो चले गए और राजा कुछ बोले नहीं, हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला। तो उसके बाद तीसरा श्लोक में कहा गया है, निमिश्चलमिदं विद्वन् तत्रम आरब्धवात्मवान् ऋत्विग्भिरपरे स्थावन् न आगमाद् यावता गुरुः। तो बहुत समय तक इंतजार किए निमि राजा ने, कि इसलिए कहा गया इधर न आगमत यावता गुरु। यावता शब्द महत्वपूर्ण है श्लोक में, यावता शब्द के द्वारा सूचित किया जा रहा है कि बहुत लंबा समय तक इंतजार किया, बहुत लंबा समय तक इंतजार करने के बाद भी न आगमत, न आगमत का अर्थ क्या है कि वशिष्ठ नहीं आए, जो उनके गुरु हैं वशिष्ठ वो नहीं आए। लंबा समय तक इंतजार करने के बाद भी उनके गुरु वापस नहीं आए, तो इस प्रकार सोचने लगे निमि। क्या सोचने लगे निमि ही, क्या सोचे? चलम इदम, चलम इदम, इदम का अर्थ है ये शरीर या ये जीवन। चलम, चलम का अर्थ है कि बहुत क्षणिक है, वो चंचल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यह चंचल व्यक्ति का जो मन है वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है, वो कभी ये सोचता है कभी वो सोचता है, कभी इधर रहता है कभी उधर रहता है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी छल है, छलम। छलम का अर्थ है कि हमारा जीवन है, क्षणिक है, कभी रह सकता है कभी भी नहीं रह सकता है। ऐसा विचार किया, छलम इदम विद्वान। विद्वान का अर्थ है कि विद्वान व्यक्ति होने के नाते ये सोचने लगे, एक प्रकार करने लगे, ये शरीर कभी भी टूट सकता है। सत्रम आरब्धवात्मवान, सत्रम आरब्ध, सत्रम आरब्ध का अर्थ है कि उन्होंने शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। क्यों शुरू किया? क्योंकि वो आत्मवान, आत्मवान का अर्थ है कि वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किए थे, इसलिए उन्होंने सोचा सत्र महत्वपूर्ण है, यज्ञ महत्वपूर्ण है, सैक्रिफाइस महत्वपूर्ण है, चलो मैं इस यज्ञ को प्रारंभ कर देता हूं। और कौन ऋत्विक बनेंगे? ऋत्विक यह अपरय स्थावन, अपरय करते दूसरे, अपरय मतलब दूसरे ऋत्विकों को उन्होंने रखा। और सावन नागमाद यावता गुरु। तो संक्षिप्त में बात यह है, तीन श्लोकों में कहा गया है कि महानिमि यज्ञ करने का प्रारंभ की संकल्प कर चुके थे और उन्होंने निमंत्रण दिया उनके कुलगुरु वशिष्ठ को। कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा कि मैं पहले ही वचन दे चुका हूँ इंद्र के इसी समय में, मैं इस यज्ञ में अभी भाग नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं इंद्र का यज्ञ करने के लिए जाऊंगा और मेरे वापस आने तक तुम इंतजार करना, किसी और को अपॉइंटमेंट मत देना, किसी और को ले मत करके वो वशिष्ठ चले गए। जब वशिष्ठ इस प्रकार बोल के चले गए, निमि राजा शांत रहे, उन्होंने कुछ भी वचन नहीं दिया, कुछ हाँ भी नहीं दिया, ना भी नहीं बोला। लंबा समय तक इंतजार किए, वो आए नहीं वशिष्ठ, तो उन्होंने सोचा कि मेरा शरीर कभी भी नाश हो सकता है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यज्ञ कर दूंगा। इस प्रकार वो संकल्प करके यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए, अन्य ऋषिकों को रखे यज्ञ करके प्रारंभ कर दिए। तो इसमें ये प्रसंग अभी इधर तक जो वर्णन किया गया इन तीन श्लोकों में, सबसे महत्वपूर्ण बात है इधर कहा गया, इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि चाणक्य पंडित का एक श्लोक को कोट करते हैं। वो कहते हैं, शरीरम क्षणम विद्वांसि अल्पांत शतायिनो गुणः। शरीरम क्षणम, इदम शरीरम क्षणम, यानी क्षणभंगुर मात्र है जीवन, कभी भी मृत्यु आ सकता है, लेकिन इस क्षणभंगुर जो शरीर है, इस शरीर की या इस जीवन की अवधि में ऐसा कार्य करो जिसके द्वारा हमारा जो जीवन है वो शाश्वत हो जाए। नीति शास्त्र में लिखा गया है कि ये शरीर है निश्चित रूप में क्षणभंगुर है, लेकिन इस क्षणभंगुर शरीर में जो कार्य किया जाता है, अगर कोई महान कार्य किया जाता है जिसके द्वारा उनको यश प्राप्त होता है, तो ये यशक्काये जरा मरणजनम भयम्, न यशक्काये जरा मरणजम भयम्। भले ही शरीर कभी भी नाश हो सकता है, शरीर को नाश होने का भय है, लेकिन जो भक्ति करता है, जिसको यश प्राप्त होता है, तो यशक्काये, ये जो भक्ति से उत्पन्न हुआ जो यश है, वो यश जो है उसका जरा मरणजम भयम्, न जरा मरणजम भयम्। इसका अर्थ है कि यश से उत्पन्न हुआ जो या जो भक्ति से उत्पन्न हुआ जो यश है, उसका जो कभी भी नाश नहीं होता है, हमेशा लोग उसको याद करेंगे। इसलिए भले ही क्षण भंगुर शरीर है, हमको ऐसे कार्य करना चाहिए जो शाश्वत हो। तो इस प्रकार विचार करने वाला व्यक्ति को विद्वान कहा जाता है। सबसे पहला विद्वान वो है जो जानता है ये शरीर नाशवान है। तो अगर शरीर नाशवान है, कभी भी उसका मृत्यु आ सकता है, और शरीर से संबंधित कार्य भी नाशवान है, हमको ये विचार करना चाहिए कि ये कब क्या, सबसे क्या फायदा, व्हाट इज द यूज। ये शरीर का तत्व को जानने से, ये शरीर कार्य, शरीर के स्तर के जो कार्य है, भौतिक कार्य है, इस भौतिक कार्य की व्यर्थता हमको अवबोध होता है, तो इसको बुद्धिमान कहा गया है। भौतिक दृष्टिकोण में उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाता है जो भौतिक कार्य करने में कुशल है, जो भौतिक कार्य करने में एक्सपर्ट होता है उसको बुद्धिमान कहा जाता है। ये लड़का बुद्धिमान है क्यों? इसको अच्छे नंबर आता है। ये व्यक्ति और बुद्धिमान है क्यों? इसको इंद्र तृप्ति करने के लिए सामग्री इकट्ठा करना उनको मालूम है। अच्छा घर इकट्ठा कर सकता है, अच्छा संपत्ति इकट्ठा कर सकता है, इसमें कुशल है, इसलिए बुद्धिमान है। ये इंद्र तृप्ति करने में कुशल है तो इससे उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहा गया है। लेकिन शास्त्र के हिसाब से उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहा गया है जो ये जानता है कि ये भौतिक जो कार्य है वो व्यर्थ है, जो भौतिक क्रियाओं को की व्यर्थता को समझ सकता है उसको बुद्धिमान कहा गया है। लेकिन भौतिकवादी लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकवादी है वो मूर्ख है। जैसे कोई ब्रह्मचारी बनने के लिए आता है या ब्रह्मचारी है या भक्ति को स्वीकार किया है, हमेशा ही कहते तुम इतना जवान हो, बुद्धिमान हो, ऐसा क्यों तुम्हारा जीवन को व्यर्थ कर रहे हो, तुम मूर्ख हो, डोंट बी ए फूल, एंजॉय। लेकिन आध्यात्मिकवादी क्या कहते हैं? भौतिकवादी, तुम लोग मूर्ख हो। लेकिन प्रश्न यह है कि कौन मूर्ख है? अभी ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर दिया है, कौन पागल है, हु इज मैड। जो पागलखाने के अंदर जो है वो पागल है, या जो पागलखाने के बाहर है वो पागल है। जो पागलखाने के अंदर है वो सोचते हैं कि बाहर जो लोग हैं वो लोग पागल है, जो पागलखाने के बाहर है वो लोग सोचते हैं कि पागलखाने के अंदर है वो पागल है। ये प्रश्न ये है कि कौन पागल है। तो प्रभुपाद इसके ऊपर व्याख्या करते हैं कि निणम प्रमत्तक कुरुते विकर्म इंद्रिय प्रिया प्रणोति। जो इंद्रिय के प्रिय वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है और इंद्र तृप्ति करता है वो क्या हो जाता है? वो निणम प्रमत्त कुरुते, प्रमत्त, वो पागल हो जाता है। वो पागल होके और विकर्म को करने लग जाता है और दुष्कार्य को करने लग जाता है। तो आत्मवत पश्यते जगत, जैसे खुद है उसी के अनुसार सारा जगत को देखते हैं। वो सोचता है कि मैं सही हूं, कोई व्यक्ति हर व्यक्ति सोचता है कि मैं सही हूं, और मैं जैसा सोचता हूं ऐसा कोई करता नहीं है तो वो पागल है। जैसा मैं विचार करता हूं ऐसा विचार नहीं करता है तो वो पागल है, वो मूर्ख है। तो भौतिकवादी सोचते हैं कि इतना दुनिया सुंदर पड़ा हुआ, उसको जो भोगने का सामग्री सब कुछ सामर्थ्य है, क्यों नहीं एंजॉय करते हो? तो आध्यात्मिकवादी सोचता है तुम कभी भी मर सकते हो, ये विचार करो। नहीं नहीं, ये भूलना चाहता हूं मैं, भौतिकवादी कहते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करना चाहिए, विचार करना चाहिए। लोग भौतिकवादी या जो इस शरीर आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, जिनका केवल रुचि इंद्र तृप्ति में रहता है, वो उनका विचार ये है मैं केवल अच्छे चीजों को ही ग्रहण करूं या सुखमय जो चीजें हैं उसी को याद करूं। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, वी कैन नेवर बी सेलेक्टिवली अनकॉन्शियस इन अवर और वी कैन नेवर बी सेलेक्टिवली कॉन्शियस इन अवर लाइफ। मान लीजिए कि आगे एक साल है, उस साल में कुछ अच्छी घटना घटने वाली है, या पिछले एक साल में कुछ अच्छी घटना घटी है और कुछ बहुत सारे बुरे घटना भी घटी है, लेकिन हमको केवल उन्हीं चीजों को स्मरण नहीं करना है कि जो अच्छी घटना घटी है, जो बुरी अनुभव है उसका भी स्मरण करना है, क्योंकि वो भी जीवन का एक भाग है। उसी प्रकार केवल मेरे जीवन में ऐसा होगा, ऐसा घर लूंगा, ऐसा होने वाला है, ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करूंगा, ऐसा जो सपना है उस सपने में भविष्य में मृत्यु भी आएगा, वृद्धावस्था भी आएगा, ये बात को कोई स्मरण नहीं करता है। हर व्यक्ति सपना देखता है, बचपन से लेके वो सपना ही देखता है, लेकिन उस सपने में केवल उन्हीं चीजों को देखते हैं जो हमको अच्छा लगता है। ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है, हम उन्हीं बातों को भी सुनना चाहते हैं जो हमको अच्छा लगता है। जैसे भागवत में प्रसंग है, जब चित्रकेतु राजा के पास अंगी ऋषि आए थे, अंगिरथ ऋषि, संगीर ऋषि ने कहा कि आपको एक पुत्र को प्रदान कर दूंगा, लेकिन आप ये पुत्र जो है आपका सुख का भी कारण होगा और दुख का भी कारण होगा। उसने बोला बाकी सब भूल जाओ, पुत्र चाहिए मुझे पहले। लेकिन जब उन्होंने कहा था सुख का भी कारण होगा और दुख का भी कारण होगा, राजा ने खाली इसी बात को सुना था, सुख का भी कारण, सुख का कारण होगा, वो दुख का भी कारण है वो बात तो सुना था लेकिन नहीं सुना। उसी प्रकार ये जो मानसिकता है भौतिकवादियों की मानसिकता है, जो चीजें हमको सुख देता है वही हमको दुख भी देता है, लेकिन उसके बारे में सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन वो दुख आता है तो रोना शुरू करते हैं, पहले बोला था क्यों नहीं सुना। तो जब मृत्यु या वृद्धावस्था इसको देखना, इसको पहचानना, इसको देखना ज्ञान कहा गया है। भगवद गीता के 8वें 13वें अध्याय में 8वें श्लोक से 13वें श्लोक के बीच में भगवान ने 19 विषयों को कहा, ने कहा कि एतद् ज्ञानम अज्ञानम इथो अन्यथा, यही ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान है। उनमें से एक ज्ञान का विषय है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। ये अनुदर्शनम शब्द महत्वपूर्ण है। अनुदर्शनम शब्द का अर्थ है कि हमेशा ये दर्शन करना कि देखना चाहिए, इस संसार की जो बुराई है या दुख है दोष है उसको देखना, इसको ज्ञान कहा गया है। और ये संसार में केवल अच्छी चीजों को देखना ये हमारी मूर्खता कहा गया, ज्ञान कहा गया है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अच्छे में श्री प्रभुपाद जी के जितने प्रवचन सुनेंगे उनमें अधिकांश प्रवचन में इसी बात के ऊपर जोर देते हैं, देखो ये संसार कितना दुखार और अशाश्वत है। और एक जगह प्रभुपाद जी कहते हैं पाश्चात्य देश में बहुत प्रयास चल रहा है कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उत्पन्न हुआ दुख किसी को दिखाई ना पड़े। तो सरकार का पूरा प्रयास है कि एक जगह एक सरकार है फ्रांस में, तो सरकार ने संकल्प लिया कि जितने भी लोग हैं हमारे जीवन हमारे राज्य में उनको सुख कैसे, उनको कैसे सुखी किया जाए। तब एक कमेटी बिठाया गया था, ये सच्ची बात है। तो कमेटी बिठा के वो लोगों ने कहा इस राज्य में किसी को आप सुखी नहीं कर सकते हो, लेकिन इतना जरूर कर सकते हो जो दुख है वो लोगों को दिखाई ना पड़े तो कुछ समय के लिए वो सुखी रह सकते हैं। यानी उनका कहना है मान लीजिए रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसको देखेंगे लोग सोचेंगे अरे एक्सीडेंट हुआ क्या है दुख है, तो एक्सीडेंट जिसका हुआ तो दुख हो तो उसको मिलेगा ही, लेकिन बाकी लोग सुखी रहना है तो उस एक्सीडेंट को देखना नहीं चाहिए, कोई मरता हुआ व्यक्ति को देखना नहीं चाहिए, कोई बीमार व्यक्ति को देखना नहीं चाहिए, तब वो लोग सुखी रहेंगे। तब उन्होंने लॉ पास किया, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ कि उस सरकार के ऑफिशियल को वो तुरंत 15 या 20 मिनट के अंदर पूरा एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है ऐसा प्रतीत करा देना लोगों को, ताकि बाकी लोग जो है सुखी से रहे। दूसरी बात, अस्पताल में कोई दाखिल हुआ उनका रिश्तेदार उनका कोई भी व्यक्ति हो उनको देखने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखेगा उसको मालूम पड़ेगा कितना दुख है। तो डॉक्टर को बोलना चाहिए आप चिंता मत करो कुछ समय के बाद एकदम ठीक होकर आ जाएगा, हाँ ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मर गया तो किसी को देखना नहीं चाहिए कि ये मर गया, क्योंकि जब दिखेगा तभी तो दुख होगा, तभी तो एहसास होगा मैं भी मरने वाला हूं। इससे शमशान में वैराग्य आता है, शमशान में कोई भी जाता है सोचता है कि ये मरा तो उधर कोई हंस नहीं सकता, उससे कोई जोक नहीं, उधर मस्ती नहीं कर सकता। जब सामने मान लो किसी का मृत्यु हुआ है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वो समय क्या आप मजा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। यानी आपको सुख चाहिए तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उत्पन्न हुआ जो दुख है दोष है उसको कभी दर्शन मत करो। जो भगवान भगवद गीता में कहते हैं ठीक उल्टा वो लोगों ने निर्णय लिया। इसलिए कुछ जगह ऐसा है कि उनका सरकार को बहुत अच्छा माना गया है, क्यों, क्योंकि बाकी लोगों को जो पर्दे के पीछे जो दुख है वो दिखाई नहीं पड़ रहा, खाली सामने दिखाएंगे कितना सुंदर है कितना अच्छा है जीवन, हाँ आप एकदम सुखी हो, आप हमेशा सुखी रह सकते हो, इस बात को विश्वास दिलाने के लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उत्पन्न हुआ जो दुख है उसको भगवान कहते हैं अनुदर्शनम, वो लोग कहते हैं ना दर्शनम, मतलब वो कभी दर्शन मत करो। तो बात यह है, उन्होंने कहा कि निमिष चलमिदम, चलमिदार्थ है कि ये जो शरीर है वो चल है, ये शरीर से उत्पन्न हुआ जो सुख है वो भी चल है, वो भी फॉल्स है, उसमें कोई शक्ति नहीं है, कुछ समय के लिए रहता है, कुछ समय के बाद चले जाता है। जैसे आप भौतिक कार्य है, हम लोग सोचते हैं कि इतना जरूरी है, इतना लोग पागल हैं, वो लोग सोचते हैं अगर मैं जन इंजीनियर नहीं बनूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा जीवन का, इतना महत्व देते हैं भौतिक कार्य को, ये भौतिक कार्य नहीं होगा या भौतिक सिद्धि हासिल नहीं करूंगा, धन प्राप्त नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा तो मेरा जीवन का क्या हो जाएगा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो है, वो सोचता है ये सब करने के बाद भी क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। ये भौतिक कार्य में निरता को जितना हद तक जानता है उतना उदासीन, उदासीन हो गता, भगवत भगवान कहते हैं उदासीन हो जाता है। भौतिक कार्यों के प्रति जो उदासीनता है ये बुद्धिमता है। बहुत साल पहले की बात है, माता पिता आए थे और एक बच्चे को लेके आए थे, तो बच्चा कभी कभी हमारे मंदिर के बच्चों के प्रोग्राम में आता है, तो माता पिता कहने लगे प्रभु जी इस बच्चे को समझाइए, उसका कुछ पढ़ता नहीं, कोई रुचि नहीं लेता है पढ़ाई लिखाई में, उसको हम कितना समझाते हैं अगर नहीं पढ़ाई लिखाई करोगे तो तुम्हारा नौकरी कैसे मिलेगा, तुम्हारा क्या होगा जीवन में। वो हमेशा बोलता है कि इस सबसे क्या फायदा, ये सब करने से मिलेगा क्या हमको, क्या होने वाला है, ऐसी बातें करता और कुछ पढ़ाई नहीं करता, कुछ रुचि नहीं दिखाता भौतिक कार्य में, कोई कार्य में। तब मैंने कहा आपका लड़का बुद्धिमान है, तो शौक गए, तो लोगों ने कहा प्रभु जी इसको समझाइए, अच्छा पढ़ाई लिख के करे, वो है बुद्धिमान लेकिन पढ़ता नहीं है। तो मैंने कहा आपने बराबर कहा, वो बुद्धिमान है इसलिए पहचान गए ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। तब वो लोग कहने लगे उन्होंने प्रभु जी ऐसे कैसे चलेगा जीवन, मतलब फर्स्ट क्लास चलेगा, आप इसका चिंता मत करो। तो वो बच्चा एकदम खुश हो गया और उस बच्चे ने कहा कि प्रभु जी आप पहली बार कोई मुझे बुद्धिमान कहा। बुद्धिमान पहली बार कहा, जो भौतिक कार्य में निरर्थता को जो पहचान सकता है वो बुद्धिमान है। इसलिए हमेशा मेरा यही प्रश्न रहा बचपन से कि जितने बड़े लोग हैं उम्र हो गए यही बात कहते हैं, बेटा मैं तो कुछ कर नहीं पाया, तुम कुछ करके दिखाना। जब हम बड़े होंगे तो हमारे बच्चों को भी यही कहेंगे, मैं तो कुछ कर नहीं पाया, तुम कुछ करके दिखाना। मतलब तो कौन कुछ करके दिखाया, कोई कुछ करके नहीं दिखाया, इज नो बड़ी, यू हैज डन समथिंग और खुश है अपनी हासिलत से, अपनी जो कार्यों से, अपने जीवन से खुश। तो ये भौतिक कार्यों में, भौतिक जीवन में निरर्थकता को देखना, तो सी यूजलेसनेस, फ्यूटिलिटी इन मेटीरियल एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। तब इधर इस प्रसंग में निमि राजा को कहा गया है निमिष चलमिदम विद्वन, क्योंकि उन्होंने ये देखा इसलिए उनको विद्वान कहा गया है। सप्तम आरब्धतात्मना आत्मवान, आत्मवान शब्द का अर्थ है सेल्फ रियलाइज सोल। निमि का जो स्थिति था वो साधारण स्थिति नहीं था, उनको उन्नत किया गया। सुखदेव गोस्वामी स्वयं कहते हैं कि आत्मवान, वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुके थे, ही वॉज ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज, और उनको ये जो सत्र की जो विधि नियम है वो सब कोई पालन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी भगवत गीताएं भगवान कहते हैं कि आस्तिता संसिद्धिम जनकादय, जनक महाराज जो है पहले से ही वो मुक्त थे, उनको कोई क्रिया आपके कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये स्यात्म क्रियावस्या आत्मतत्वस्मानव सदस्य कार्यम विद्यते, उनको कार्य करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको कोई संस्कार, कोई कुछ करने की, कोई क्रिया, कोई औपचारिकता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी प्रकार के निमि राजा, तो उन्होंने इस प्रकार सोचा कि अगर जब तक मैं जीवित रहूं जाने कब मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूं, क्योंकि वो स्वर्ग गए थे कौन वशिष्ठ, और स्वर्ग में जो है समय बहुत धीरे चल, स्वर्ग का जो एक दिन है इधर का 6 महीना है। अगर मान लीजिए कि वशिष्ठ स्वर्ग गए इंद्र की यज्ञ में, उधर 1 हफ्ते का यज्ञ है समझ लीजिएगा, 1 हफ्ता मानते इधर कितना हो गया, कितने साल बीत जाएंगे। निमि ने सोचा कि कभी भी मेरा मृत्यु हो सकता है, और उनकी ये जो औपचारिकता है नहीं, हमारे कुल गुरु है वशिष्ठ, उनको ही बुलाना। जिसने वशिष्ठ जो है सूर्यवंश के कुल गुरु है, कुल गुरु होने के नाते सबसे पहला कर्तव्य बनता है कुल गुरु को आमंत्रण देना। उन्हें आमंत्रण दिया था, लेकिन ये जो कुल गुरु को ही निमंत्रण देना, ये जो रूल है, ये जो औपचारिकता है, इस औपचारिकता को निमि ने पालन नहीं किया। उसके पीछे दो कारण हैं। ये कारण है, स्वयं निमि राजा वो आत्मवान, वो सेल्फ रियलाइज थे, तो ये नियम परे है। दूसरा कारण है, महत्वपूर्ण कारण, यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ होने के लिए एक ऋत्विक की आवश्यकता है, और यज्ञ होना महत्वपूर्ण है। यही व्यक्ति आएगा तभी यज्ञ होगा, वो महत्वपूर्ण नहीं है। जो आध्यात्मिक कार्य होना चाहिए, जब तक ये नहीं आएगा तब तक आध्यात्मिक कार्य नहीं होगा, वो महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे भगवान की सेवा है, भगवान की सेवा होना समय पे होना आवश्यक है। नहीं, यही पुजारी आएगा जब तक नहीं होगा, ये विचार जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। समय समय पे भगवान की पूजा होना चाहिए, भगवान की सेवा होना चाहिए, आध्यात्मिक कार्य होना चाहिए। तो ये मात्र विचार करते हुए सप्तम सप्तम कार्य है यज्ञ। जैसे भागवत के शुरुआत में कहा गया है कि तैकदात मुने प्राप्त हतहुतात्म सप्तम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सहमासता। सप्तम कार्य है यज्ञ का स्थान। जैसे गांव में जाएंगे, मच्छी मार्ग में कहा जाता है ये सत्र है, पुराने पुराने जो घरों में सत्र रहता है, जहाँ ब्राह्मण लोग आते हैं और रुकते हैं और उधर यज्ञ करते हैं, नित्य यज्ञ करते हैं, उसको सत्र कहा गया है। लेकिन अभी तो उस जगह का जो स्थान हो गया गेस्ट हाउस जैसा हो गया, चलो गेस्ट हाउस नहीं है, सत्र है। सत्र का अर्थ है जहाँ यज्ञ होता है उसको सत्र कहा जाता है। सत्रम आरत्मात्माम ऋत्विक वीर अपरे स्थावन, ऋत्विक वीर अपरे स्थावन, अन्य ऋतिकों को बुला के उन्होंने यज्ञ करना शुरू कर दिया। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ग्रेट पर्सनैलिटी महाराज निमि हु न्यू दिस फैक्ट। ये महाराज निमि महान व्यक्ति हैं, महान राजा हैं, महान आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुए व्यक्ति हैं। इसलिए उन्होंने सोचा, क्या सोचा, कि इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ वन शुड परफॉर्म एक्टिविटीज इन सच वे दैट एट द एंड वन गोज बैक होम बैक टू गॉड हेड एंड दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन। हमको ऐसे कार्य करना चाहिए ताकि भगवत धाम में वापस जाए। भगवत धाम में वापस जाने के लिए तैयारी है, और एक एक क्षण जो है वो केवल इसी के लिए दिया गया है। इसे पत्र सामंजस्य में कहा गया है, जो भाव के स्तर को प्राप्त किया जो भक्त होते हैं उनका एक लक्षण होता है, वो लक्षण अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ कालत्वम का अर्थ है एक क्षण भी वो व्यर्थ नहीं करता भौतिक कार्यों में। उनके प्रत्येक क्षण जो है, प्रत्येक समय जो है, वो सोचते हैं कि मैं आध्यात्मिक प्रगति के लिए इस्तेमाल करूं, भगवान की सेवा में इस्तेमाल करूं। तो ये जो विचारवान होता है वही व्यक्ति भगवान की धाम में जाने के लिए योग्यता प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमेशा ये विचार करना चाहिए भक्त को कि मैं समय की बर्बादी ना करूं, आई डोंट वॉन्ट वेस्ट माई टाइम, किसी न किसी तरीके से मैं अपने भक्ति के कार्य में जुड़ा रहूं। और एक एक क्षण जो इतना कीमती है, वही चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर आपके सोने की मुद्राएं, बहुत सारा धन भी व्यर्थ हो गया, फिर वापस मेहनत करके कमा सकते हो, लेकिन एक क्षण व्यर्थ हो गया, कितना भी सोने की मुद्राएं दो, कितना भी पैसा दो, वो क्षण को हम वापस नहीं ले सकते। इसलिए समय बहुत कीमती है, समय बहुत महंगा है। इसलिए हमेशा विचार करना चाहिए, ऐसा जीना चाहिए ताकि मैं कभी भी मर सकता हूं। एक बार हमारे घर में जब गया, तो आप एक बार गया था, 5-6 साल पहले हमारे गांव में गया था, तो मेरे पिताजी ने एक प्रवचन ऑर्गेनाइज किए थे। प्रवचन में बड़े बड़े विद्वान लोग आए थे, संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल, बहुत बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पौराणिक जो मुझे बचपन से जानते हैं, तो सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे। तो प्रवचन देने से पहले मेरा परिचय देने के लिए बहुत एक विद्वान व्यक्ति है, वो आके मेरा परिचय देने लगे। मैंने परिचय दिया कि जो हम लोग हैं इधर बैठे हैं, हम दोनों में अंतर ये है कि हम तो ऐसे ही जीवन व्यापन करते हैं कि हम कभी मरने वाले नहीं हैं। हम सोचते हैं कि यही शरीर शाश्वत रहेगा, हम कभी मरने वाले नहीं हैं। लेकिन ये जो है हमारे सामने, वो उनका जीवन जो है इस प्रकार है कि इस प्रकार जीते ताकि मृत्यु का सांप जो बाजू में है सोया हुआ है, ये विचार करके इस प्रकार का विचारधारा से अपने जीवन यापन करते। मैंने सोचा कि मैं तो कभी भी ऐसा सोचा नहीं। तो उन्होंने कोई शास्त्रीय श्लोक कोट किया, मुझे अभी याद नहीं है, वो श्लोक कोट करके उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति मृत्यु का सांप बाजू में है ऐसा विचार करके जीवन व्यापन करता है, ऐसा विचार करके सोता है, वो हमेशा वो जो है भगवान को प्राप्त कर सकता है। वो श्लोक मुझे याद नहीं, लेकिन सोचा कि क्या परिचय है। बहुत सारे लोग परिचय देते हैं कि ये ऐसा है, ये इस काम के है, वो है, ये है, लेकिन इस प्रकार का परिचय मैं कभी सुना नहीं, क्योंकि विद्वान व्यक्ति उन्होंने इस प्रकार परिचय दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आई कैन डाई एनी टाइम। अगर मान लो कि अगर हमको मोटिस मिल जाए, कोई डॉक्टर के पास गए कुछ बीमारी की वजह से, डॉक्टर ने कहा कल सुबह आपका मृत्यु है, तो क्या करोगे? रात भर सोओगे? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, ये नींद नहीं है, कुछ नहीं आएगा। नींद क्यों आया? जीत क्यों आता है? अन्य ख्याल क्यों आता है? क्योंकि अभी वो अवबोध नहीं है। क्या अवबोध नहीं है? कलम मिदम, कभी भी ये मृत्यु हो सकता है, वो उसका साक्षात्कार नहीं है। इसलिए एक दूसरे को जब मिलते हैं हरे कृष्णा तो याद दिलाएंगे, साक्षात नहीं, ये भी याद दिलाना चाहिए कि एनी टाइम मृत्यु हो सकता है, एनी टाइम वी कैन लीव द बॉडी। ये इसको ज्ञान कहा गया है। विज्ञान वो है जब कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं, कृष्ण भक्ति का जो ज्ञान है उसको विज्ञान कहा गया है। लेकिन साथ साथ में ये भौतिक जगत में दोषों को देखने का जो बुद्धि है उसको ज्ञान कहा गया है। इससे भविष्य कहते हैं ज्ञान विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्षस्य शुभा। चौथे चौदहवें अध्याय भगवान इस बात को कहते हैं कि तत्व रजस्तमेति नान्यत्। जितने भी कार्य इस जगत में हो रहा है वो सारे कार्य तीनों गुणों की वजह से होता है। तो साथ साथ में ये भी देखना चाहिए कि गुणेभ्यः परम वेत्ति मत भावम शादी गच्छति, नान्यः गुणेभ्यः कर्तारम यथा दृष्टान पश्यति। ये सारे जगत में भौतिक कार्य तीनों गुणों के संसर्ग की वजह से हो रहा है, कभी भी हम शरीर का नाश हो सकता है। साथ साथ में ये भी देखना चाहिए गुणेभ्यः परम वेत्ति, भगवान को भी देखना, यानी ज्ञान विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्षसि अशुभात। कुछ लोग सोचते हैं कि बस सभी भक्ति के कार्य भगवान का स्मरण करेंगे। भगवान का स्मरण तीव्रता से तभी होगा जब ये भौतिक जगत की जो दुख है और अनिश्चितता है हमारे जीवन का, उसका स्मरण करेंगे। इससे दोषों का स्मरण साथ में होना चाहिए। परीक्षित महाराज का पूरा भागवत प्रसंग इसी से है, मृत्यु ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैटर है। इसलिए सब लोग चाहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, लेकिन सबसे पहला आर्ट ऑफ डाइंग, बाद में आर्ट ऑफ लिविंग। पहला आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, क्योंकि लाइफ एंड्स विद डेथ, फर्स्ट नो डेथ, फर्स्ट आर्ट ऑफ डाइंग, बाद में आर्ट ऑफ लिविंग। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? नहीं क्वेश्चन? हाँ हाँ, कन्नड़ की एक कहावत है हेन्नु मुन्नु हुन्नु, ये तीनों गुजराती में एक कहावत है, सारा तीन स्त्री जमीन और तीसरा हाँ धन, क्या है वो, क्या बोलते हैं? हाँ ये तीनों झगड़े का कारण है। ये कहावत है, सही बात है, ये जहां तीन है उधर झगड़ा होगा, जहां ये तीन है उधर झगड़ा निश्चित रूप में होगा। कोई झगड़ा कर रहा है इसका मतलब दोनों इसके पीछे तीन चीजें हैं, स्त्री होगा या धन होगा या जमीन होगा। आप उसका सबूत क्या है, कोर्ट में जाके देखिए, कितना भी केस, बहुत सारा केस नहीं है वो उसका तीन कैटेगरी है, स्त्री के झगड़े से, स्त्री की वजह से झगड़ा, जमीन की वजह से झगड़ा, धन की वजह से झगड़ा, और कारण प्रश्न क्या था एग्जैक्टली, स्त्री कारण कैसा, वो मुझे कैसे मैं कैसे बता सकता हूँ आप घर में रहते हो आपको ज्यादा मालूम है तो मैं इतना बोल सकता हूँ है, लेकिन कैसा वर्णन आप कर सकते हो डिटेल वर्णन मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप कर सकते हो। और कोई प्रश्न, हाँ क्या चीज, कौन सा श्लोक है पहला, हाँ एकदम एकदम ठीक है, गाइए चलेगा वेरी गुड बोला अरे तो सबसे कई प्रश्न है कि क्या प्रश्न है कि शुरुआत में तो मृत्यु से डर लगता था, अभी क्यों नहीं लगता है कि नहीं, तो इसका दो कारण है, दो कारण हो सकते हैं, कौन सा कारण है आप अपने लिए जानिए। महाराज शुरुआत में जब आए थे मृत्यु के डर से आए, म्रियमाण आया, मैं मरने वाला हूं इससे मुझे क्या करना चाहिए बताइए। पूरा नौ स्कंद का श्रवण करने के बाद दसवां स्कंद में मैं इधर बैठा हूं, निश्चिंत होकर बैठा हूं, आप केवल कृष्ण कथा को श्रवण कराते चाहिए, मेरा किसी से भी डर नहीं है अभी, ठीक है। तो मृत्यु का डर से कृष्ण कथा तक पहुंचे, कृष्ण कथा का नौ स्कंद का श्रवण की वजह से मृत्यु का डर निकल गया, क्योंकि अब तक उनको कृष्ण में पूर्ण आसक्ति हो गया, जिसका कृष्ण में पूर्ण आसक्ति हो गया, मृत्यु का डर नहीं, किसी का डर नहीं, ये कारण की वजह से मृत्यु का डर नहीं हो सकता है। दूसरा कारण है मृत्यु का डर से वजह से कृष्ण के पास आए और कृष्ण की कृपा से हमको भक्ति मिला, लेकिन हमारी आलसपन की वजह से भक्ति को बहुत सहज ले लिया, सरल ले लिया, जब कृष्ण कथा भी है तो आज नहीं तो कल सुन लेंगे, कंप्लेसेंसी, कंप्लेसेंसी मतलब क्या बोलेंगे उसको, सहजता, ये सहजता उत्पन्न हुआ नो भक्ति में अपराध की वजह से। दीक्षित महाराज ने श्रवण किया था तीव्रता से, उस वजह से उनको मृत्यु का डर उत्पन्न हो गया, निकल गया, जो डर जिसका कारण की वजह से कृष्ण का प्राप्त हुआ उसके वजह से वो आगे जाके भगवत धाम जाने का कारण हो गया, वो मृत्यु का भय से मुक्त होना। लेकिन ये मुक्त भय से मुक्त होना नहीं है, कंप्लेसेंसी हो गया। अधिकांश साधना अवस्था में हमारा यही अवस्था होता है कि हम ढीले पड़ जाते हैं, क्यों, अपराधों की वजह से। जो श्रद्धा और श्रद्धा से भक्ति करते हैं, अपराध रहित करते हैं, तुम्हारी जो मन है वो कृष्ण में लग जाता है। तो ये डिपेंड करता है कौन किसके वजह से मृत्यु से भय मुक्त हो गया, डिपेंड करता है, निर्भर करता है हमारी कृष्ण कथा में कितना रुचि है। कृष्ण कथा की रुचि के वजह से मुक्ति से भय उत्पन्न निकल गया वो परीक्षित महाराज जैसा है, लेकिन आलसपन की वजह से मृत्यु से भय निकल गया है, कृष्ण कथा में रुचि नहीं है, वो जो है बड़ा घातक है। लेकिन अधिकांश हमारा क्या है, पहला है दूसरे नंबर में आता, दूसरा, इसलिए बार बार ऐसे ही प्रवचन सुनना चाहिए जहां लोग याद दिलाते हैं मृत्यु है, आई कैन डाई एनी टाइम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, अनु का अर्थ है हमेशा दर्शन करना। ठीक है, ग्रंथराज भागवतम की श्वेतोपाध की जाए।
जन्म से कोई कमी